नूर अरमान के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची। अरमान ने गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में ही रोक दी। वो बाहर उतरकर गाड़ी के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद नूर अपना एडमिशन करवाकर बाहर आ गई। चलो, मेरा एडमिशन हो गया, नूर ने सहज से लहजे में बताया। अरमान वहीं खड़े खड़े बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आई। नूर ने उसकी तरफ देखा। जब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अरमान ने सवाल किया, तो कल तुमने इतना तमाशा क्यों किया? मुझे तुम्हारे सामने माफी तक मांगनी पड़ी। क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की थी, नूर ने सीधा जवाब दिया। अरमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी तो आज तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी क्यों आई, एडमिशन कराने के लिए? फिर वो थोड़ा तीखे लहजे में बोला, मतलब तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तब तक था जब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचना था? काम पड़ा तो सब भूल गई? कौन सा मतलब? नूर ने शांत स्वर में पूछा। यही कि तुम्हें फॉर्म जमा करना था, अरमान बोला, तो गुस्सा अपने आप उतर गया। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने मुझसे माफी मांगी थी, सॉरी कहा था, इसलिए। फिर एक पल रुककर बोली, सिर्फ माफी ही नहीं मांगी थी आपने, वजह भी बताई थी। आपने कहा था कि आपने मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ समझ लिया था, इसीलिए वो सब कह दिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अरमान चौंक गया, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? नूर ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मैं तुमसे शादी करने थोड़ी आई हूं, मैं यहां पढ़ने आई हूं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरमान उसे देखता रह गया। उसकी इस बेपरवासी बात ने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। अब आपकी बात क्लियर हो गई हो, नूर ने कहा, तो चलें। ये कहते हुए वो अरमान के बराबर गाड़ी में बैठ गई। उधर अरमान के घर में बिल्कुल अलग तमाशा चल रहा था। नूर को छोड़ने के बाद अरमान सीधे अपने घर आ गया था। अब सबके सामने ये बात साफ हो चुकी थी कि रिहाना बेगम अरमान की डील क्रैक होने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रही थी, और वो भी दूसरे घर में। फैजान मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था। उसके हाथ ग्रीस से सने हुए थे, मगर कान लॉन में चल रही बातचीत पर ही लगे थे। वहीं अरमान, माहिरा और जुबैदा बेगम तीनों बैठे थे। मेरे भाई ने डील क्रैक की है, माहिरा ने खींचते हुए कहा, तो सेलिब्रेशन भी हमारे घर में होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी ताई अम्मी को कौन मना करे, जुबैदा बेगम ने ठंडी आवाज में कहा। और वो जानबूझकर वहां सेलिब्रेशन कर रही हैं, माहिरा ने तंज में कहा, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। तो तुम मत जाना, जुबैदा बेगम गुस्से में बोली, हम लोग तो जरूर जाएंगे, तुम बाद में अपने घर पर अलग से सेलिब्रेशन रख लेना। फैजान चुपचाप ये सब सुनता रहा और साथ साथ अपना काम करता रहा। उसने ना तो सिर उठाया ना ही कुछ कहा। थोड़ी देर बाद जुबैदा बेगम फिर बोली, वैसे एक बात सुन लो माहिरा, अगर उस प्लॉट पर रेहान ने अपने कनेक्शन लगाने शुरू कर दिए तो बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने बीच में दखल क्यों नहीं दिया, मैं पहले ही कह रही हूँ। क्यों? माहिरा ने तुरंत सवाल किया। प्लॉट तो अरमान के नाम पर है, रेहान वहां अपना दखल क्यों देगा? जमीन तो अरमान के लिए ली गई है। बिल्कुल, जुबैदा बेगम ने सिर हिलाया, लेकिन पूरी डील रेहान के नाम पर हो रही है, अभी प्लॉट भी उसी के नाम है, और जो पेमेंट हुई है उसका चेक भी रेहान की तरफ से गया है। माहिरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। माहौल हल्का करने के इरादे से अरमान हंसते हुए बोला, वैसे मॉम आपको भी बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप तो बड़े बड़ों को पानी पिला सकती हैं। माँ से मस्का लगा रहा है, माहिरा ने तुरंत कहा, इसे लगता है कि आप मेरी वजह से कहीं सेलिब्रेशन में ना चली जाएं और घर पर ही रुक जाएं। सच कह रहा हूँ मॉम, अरमान बोला, आप तो बड़े बड़ों को घर बिठा देती हैं। ये कहते हुए उसकी नज़र अनजाने में फैजान की तरफ चली गई। दरअसल जुबैदा बेगम हमेशा फैजान को घर के कामों में लगाए रखती थी, उसे आगे पढ़ने नहीं दिया गया था। घर में सब यही मानते थे कि ग्रेजुएशन में उसके नंबर बहुत कम आए होंगे और वो किसी तरह पास हुआ है। हकीकत ये थी कि ना किसी ने कभी उसके डॉक्यूमेंट देखे, ना ही कहीं से पता करने की कोशिश की। बस उसके शांत चेहरे और दबे स्वभाव को देखकर यही मान लिया गया कि वो कुछ खास नहीं कर पाया। फैजान अरमान का इशारा समझ गया था। जुबैदा बेगम ने उसकी तरफ देखा। फैजान बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ना वहां प्रोग्राम हो रहा है फरीद भाई के घर, जाकर वहां के सारे इंतजाम में उनकी मदद कर देना। जी चाची जान, फैजान ने अदब से कहा, मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। माहिरा कभी अपनी माँ को देखती, कभी फैजान की पीठ को। उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल और कितनी उलझने एक साथ तैर रही थीं। शाम ढलने को आ रही थी। घर के अंदर हल्की सी उदासी और बेचैनी फैल चुकी थी। इकबाल अभी तक घर वापस नहीं आया था। नूर हॉल में इधर उधर टहल रही थी, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती, कभी मोबाइल स्क्रीन पर नजर डालती। बार बार इकबाल का नंबर मिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार कॉल या तो लग ही नहीं रही थी या फिर कट जा रही थी। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। उसी वक्त रेहान अंदर आया। उसकी नजर सीधे नूर पर पड़ी, जो एक जगह टिकी नहीं पा रही थी। सब ठीक तो है? उसने हल्के से पूछा। तुम काफी परेशान लग रही हो। नूर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार मोबाइल देखा और फिर से इकबाल का नंबर डायल करने लगी, जैसे उसी में उसकी सारी उम्मीद अटकी हो। रेहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर हॉल में लगे सोफों पर बैठ गया। वहां पहले से ही रेहाना बेगम और सादिया बैठी हुई थीं। उनके चेहरों पर भी चिंता के हल्के हल्के साए थे। क्या हुआ? रेहान ने उनसे पूछा। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली। इकबाल भाई अभी तक नहीं आए, उन्होंने कहा, इसीलिए नूर परेशान हो रही है। रेहान ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तो फोन करके पूछ लो, वो बोला। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उनका फोन बंद है, सादिया ने जवाब दिया। वो अपने किसी रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए होंगे, रेहान ने सहज लहजे में कहा। बैटरी डाउन हो गई होगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? फिर जैसे उसे खुद ही एहसास हुआ कि बात कुछ ज्यादा हल्की कह दी है, वो चुप हो गया। रेहाना बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उनकी नजर नूर पर टिक गई। लेकिन जब इंसान इतनी बेचैन हो जाए तो कुछ तो वजह होती है। उनका इशारा साफ तौर पर नूर की तरफ था। उसी वक्त दरवाजे पर हलचल हुई। तभी इकबाल हॉल के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में नूर का सामान था। नूर ने उसे देखते ही राहत और डर के मिले जुले भाव से कहा, अब आप कहाँ रह गए थे? मैं तो परेशान हो गई थी, सुबह से आपको फोन कर रही हूँ। मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, आपका फोन भी बंद था। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं ठीक हूँ, इकबाल ने नरमी से कहा। अब आ गए हैं ना? रेहाना बेगम ने नूर से कहा। उन्हें बैठने दो। नूर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन दिल को थोड़ी तसल्ली मिल चुकी थी। कमरे में फैली बेचैनी धीरे धीरे सुकून में बदलने लगी। रात का खाना खाने के बाद वो चुपचाप बाहर लॉन में आकर बैठ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद फरीद और रेहान कपड़े बदलकर बाहर आए। दोनों ने इकबाल को अकेले बैठे देखा तो उसके पास आकर बैठ गए। क्या हुआ? फरीद ने धीरे से पूछा। आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। और पूरा दिन कहाँ थे? रेहान पहले ही समझ चुका था कि सुबह क्या हुआ था और इकबाल सारा दिन क्यों घर से बाहर रहा। वो चुपचाप इकबाल की तरफ देखता रहा। इकबाल ने गहरी सांस ली और कहा, नूर के लिए हॉस्टल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। कई हॉस्टल में जाकर पूछा, कई जगह फोन किए, मगर अभी कहीं भी जगह खाली नहीं थी। फरीद ने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा। तू इतनी फिक्र कर रहा है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।